सत्यम शिवम सुंदरम, ये वो तीन शब्द हैं जिन्हें समझने की कोशिश आदमी सदियों से करता चला आ रहा है। सच क्या है, शिव क्या है, सुंदर क्या है? जिसने सुबह का सूरज देखा है उसके लिए सूरज का उगना सच है, और जिसने शाम देखी है उसका सच है सूरज का डूबना। शिव यानी श्रद्धा, प्यार, विश्वास, वो भी तो सबका अपना अपना अलग है। और सुंदर, क्या होती है सुंदरता, कहां होती है? किसी चीज में होती है या कि देखने वाले के मन में? अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या है तो आप क्या कहेंगे? पत्थर, यही ना? और अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये क्या है तो आप क्या कहेंगे? भगवान। लेकिन वास्तव में जो आपकी आंख देख रही है वो क्या है? पत्थर। तो फिर इसे भगवान किसने बनाया? आपकी श्रद्धा ने, आपके विश्वास ने, आपके प्यार ने, जो सत्य है, शिव है, सुंदर है।
फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम 1978 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और इवन एडिटर तीनों थे राज कपूर साहब। फिल्म की शुरुआत होती है उगते हुए सूरज के साथ राज कपूर की आवाज से, जो सत्य, शिव और सुंदरता का अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
ये वो तो नहीं श्याम सुंदर भजन वाले की बेटी?
वही तो है रूपा।
इतनी नन्ही सी थी जब मैंने देखा था, अब तो जवान हो गई है। ब्याह नहीं हुआ इसका?
ब्याह और इसका? जितने लड़के वाले हैं ना गांव में, एक एक के दरवाजे पे माथा टेक चुका है पंडित। पर कौन ब्याह के ले जाएगा इस मनहूस को? घर फूंकना होगा तो वैसे ही आग नहीं लगा लेगा घर को?
क्यों, ऐसी भी क्या बात है?
शकल नहीं देखी है भागन की?
तो ये है रूपा, मुंह जली, बदसूरत। मुरली मनोहर के दरबार में सत्यम शिवम सुंदरम गाने वाली रूपा की अपनी जिंदगी का सत्य बड़ा ही कड़वा था, बड़ा ही अशुभ, बड़ा ही असुंदर। जिस दिन से पैदा हुई दो ही तो शब्द सुने हैं उसने, मनहूस और अभागन। जैसे ये दो शब्द भी उसी के साथ पैदा हुए हों। कल ही की तो बात है, कृष्ण जन्माष्टमी की रात थी, रूपा का बाप पंडित इसी मंदिर में बैठा आरती गा रहा था और सोच रहा था, बुढ़ापे में ही सही, बहुत जल्द उसके घर भी ऐसा सुंदर सा कन्हैया जन्म लेगा।
ओ,
में आरती के बीच कुछ गांव वाले रूपा को उसकी बदसूरती पे बहुत कोसते हैं और उसका अपमान भी करते हैं। फ्लैशबैक में उसे याद आ रही है कृष्णाष्टमी की वो रात, जब उसके पिता पंडित मंदिर में भजन गा रहे थे कि अचानक किसी बच्चे के बुलाने पर भागे भागे घर पहुंचते हैं। उन्हें लगता है उनकी गर्भवती पत्नी को लड़का हुआ होगा, मगर अफसोस की बात ये थी कि उनकी पत्नी इस दुनिया में रही ही नहीं। उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया, ये वही रूपा है जिसे लोग घर परिवार और संसार अभागन के रूप में जानते हैं और उसे मनहूस कहते हैं। रूपा जब थोड़ी बहुत बड़ी हो जाती है तो वो अपने पिता से अपने अपमान का कारण पूछती है, मगर वो उसे डांट कर चुप करा देते हैं और अपने साथ लेकर सरपंच जी के बेटे के जन्मदिन के मौके पर पहुंचते हैं, जहां गाना गाते गाते वो अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो रूपा उनका साथ देती है।
यशो मती मैया से बोले नंदलाला, यशो मती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी।
पंडित, शुभ कार्य में क्या विघ्न डाल रहे हो?
यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला।
पंडित रूपा के गाने से काफी खुश होते हैं और वो हमेशा उसे अपने साथ ही रहने को कहते हैं। रूपा जिद करती है कि उसका जन्मदिन मनाया जाए। पंडित गुस्से से उस पर हाथ छोड़ देते हैं और कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि मरण दिन कैसे मनाया जाए, क्योंकि उनकी पत्नी का उसी दिन देहांत हो गया था। मगर उनके एक दोस्त हैं जो रूपा को बहुत प्यार करते हैं, कहते हैं कि वो रूपा का जन्मदिन मनाएंगे और वो रूपा के लिए ढेर सारी चीजें बनाते हैं। मगर जैसे ही वो बाहर जाते हैं, रूपा एक कढ़ाई से पूरी निकालते समय बुरी तरह जल जाती है। अब रूपा मनहूस के साथ साथ बदसूरत भी हो गई है। उसकी बदसूरती उम्र के साथ साथ बढ़ जाती है। कोई उससे शादी करने को तैयार नहीं होता। रूपा अपने पिता को समझाती कि वो किसी का हाथ पांव न पकड़े और किसी से मिन्नतें न करे, अगर उसकी किस्मत में होगा तो खुद ब खुद उसका जीवन साथी आ जाएगा।
एक सच्ची बात कह दूं पंडित, अरे कोई अप्सरा दे रहे हो ना तो और बात है, खाली हाथ भी ले जाए, मगर ये जो सूरत है तुम्हारी बेटी की उसका तौल तो नदी से ही बहता है। रुपया निकालो और अभी कर लो रिश्ता, वरना चल मेरे सुपुत्र।
ठहरिए ठहरिए शास्त्री जी, ठहर जाइए शास्त्री जी, स्वीकार कर लीजिए सभागन को, मेरी बेटी गऊ है शास्त्री जी, और पैसा जब भी जमा हो जाएगा आपकी सेवा में आ जाऊंगा, आखिर रहना तो मुझे इसी गांव में है।
ओ पंडित, गांव छोड़ के हम भी नहीं जा रहे हैं, जब रुपयों का बंदोबस्त हो जाए संदेशा भेज देना, समझे? चल मेरे सुपुत्र।
शास्त्री जी ऐसे न जाइए शास्त्री जी, मुझे यूं
ठुकरा के
जाइए शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी।
दवा पी लो बाबा।
मैं लाचार हूँ बेटी, बहुत लाचार हूँ, आज मेरे पास चार पैसे होते तेरे हाथ पीले कर देता, तुझे तेरे घर पहुंचा देता बेटी।
बाबा यही मेरा घर है, मुझे यहीं रहने दो, मत झोली फैलाओ किसी के आगे, मत भीख मांगो बाबा, अगर कोई होगा मेरी किस्मत में तो अपने आप चलाएगा।
और इधर एक रात उनके गांव में शहर से राजीव, जो कि बांध के काम के लिए गांव में आया हुआ एक इंजीनियर है, वो रूपा के गांव आता है। रूपा उसे देखती है तो देखती रह जाती है। फिर रूपा सुबह सुबह मंदिर में एक गीत गाती है जिसे सुनकर इंजीनियर साहब यानी कि राजीव उसके गाने में बिल्कुल खो जाते हैं।
ईश्वर सत्य है। शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम शिवम सुंदर शिवम सुंदर।
एक दिन गांव में बांध के उद्घाटन के लिए मंत्री जी पहुंचते हैं। उनके स्वागत में लड़कियां एक गाना गाती हैं और राजीव फिर उसी आवाज को सुनकर उसमें खो जाते हैं और उसे ढूंढते हुए मेले पहुंचते हैं जहां लड़कियां उनके साथ छेड़खानी करती हैं।
राजीव बाबू कमाल कर रहे हैं, अभी तक तैयार नहीं हुए आप।
आपके यहाँ रोज ऐसे ही सुबह होती है क्या?
सुबह सुबह तो हर जगह ऐसी हुआ करती है राजीव बाबू, सूरज उगता है तो सुबह, डूबता है तो शाम।
मैंने ऐसी सुबह जिंदगी में पहली बार देखी है। ऐसा लगा जैसे आज तक इसी सुबह की तलाश में भटकता रहा, बल्कि देखा बाद में पहले सुबह को सुना है मैंने।
सुबह को सुना है? कुछ गड़बड़ है राजीव बाबू, आपको होना चाहिए था शायर और आप बन गए इंजीनियर। चलिए चलिए जल्दी कीजिए, नहीं तो हम उद्घाटन के बाद पहुंचेंगे। चलिए।
राम राम बाबूजी।
राम राम। बड़ा केसरिया पहन रखा है, खुश नजर आ रहे हो।
हाँ बाबूजी, खुशी का ही तो मौका है, बांध का पानी खुलेगा तो सबका भला होगा, गांव में खेती लहलाएगी, ये सब आप लोगों की कृपा है।
मेले में राजीव को जब बड़े बाबू सूरत बदलने वाला आईना दिखाते हैं तो वो बुरी तरह चीख पड़ते हैं। राजीव की हर सुबह अब रूपा के मंत्रमुग्ध करने वाले गानों से होती है। उसकी आवाज उन्हें बुरी तरह बेचैन कर देती है। वो बस उस लड़की की तलाश में है जिसकी आवाज इतनी प्यारी है। वो देखना चाहते हैं कि लड़की जिसकी आवाज इतनी सुंदर है वो खुद कितनी सुंदर होगी। वो रूपा का पीछा करते हैं और पीछा करते हुए वे पनघट में पहुंच जाते हैं जहां रूपा ये गाना गाती है।
और भरे पनघट पे मोहि नट नट शाम सताए मोरी सुनहली पटी जाए मैं का करूं आराम आए आए। और भरे पनघट पे मोहि नट नट शाम सताए मोरी सुनहली पटी जाए मैं का करूं आराम आए आए। और भरे छत पे।
राजीव बाबू अब हमेशा रूपा का पीछा करते रहते हैं और अब उन्हें उनका नाम पता चल गया है। वो उसे बस एक नजर देखना चाहते हैं। राजीव को रूपा की आवाज की इतनी कद्र हो गई है, उसे इतना प्यार हो गया है कि उनका काम में अब मन लगता ही नहीं, चारों तरफ उन्हें रूपा ही नजर आती है। वो रूपा को एक खत देते हैं जिसमें उन्होंने रूपा को चंचल, निर्मल, कोमल, संगीत की देवी स्वर सजनी कहते हैं। इन शब्दों के तारीफ को देखकर रूपा खुद को आईने में निहारती है और राजीव बाबू के उन्हीं शब्दों में खोकर वो खुद को ढूंढती है, मगर फिर वो डर जाती है अपने रूप की सच्चाई को महसूस करके।
चंचल,
शीतल, निर्मल,
कोमल,
संगीत की
देवी स्वर सजनी। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल, संगीत की देवी स्वर सजनी। सुंदरता की हर प्रतिमा के बढ़कर है तू सुंदर सजनी। चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल, संगीत देवी स्वर सजनी।
राजीव को जब रूपा की एक सहेली छेड़ती है तो वो उससे बचकर भागता हुआ कीचड़ में गिर जाता है। रूपा वहाँ आकर आंचल का सहारा देकर उन्हें बाहर निकालती है और पनघट पर ले जाती है, जहाँ दोनों गीतों के जरिए दिल की बात कहते और सुनते हैं।
यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी नहीं क्यों काला, राधा क्यों गोरी नहीं क्यों काला।
वाह, ये तो कमाल हो गया, बिल्कुल यही तो मैं पूछा करता। अच्छा तो मैया क्या जवाब देती थी?
बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैनों वाले ने हो, काले नैनों वाले ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला।
बिल्कुल ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया है।
जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे?
इसमें झूठ क्या है? जब देखो घूरती रहती हो मुझे, तुम्हीं ने तो जादू डाला है मुझ पे।
इधर रूपा मंदिर में भगवान से प्रार्थना करती है कि उसका साया भी राजीव बाबू के जिंदगी पर ना पड़े, ताकि उनकी जिंदगी में मनहूसियत ना आए। उसी समय राजीव मंदिर पहुंच जाता है और उसे अपना बनाने का वादा करता है। पर जब रूपा उससे ये जानना चाहती है कि अगर वो खूबसूरत ना हुई, सुंदर ना हुई जैसी कि उनके ख्यालों में है, तो राजीव झुंझलाकर कहता है कि वो अंधा होना पसंद करेगा उसकी बदसूरती देखने के बदले। रूपा ये सुनकर वहां से चली जाती। राजीव बाबू तो रूपा के घर जाकर पंडित से उसका हाथ मांगते हैं। उन्हें तो लगता है कि जैसे भगवान खुद चलकर रूपा का हाथ मांगने आए हैं और वो हाँ कह देते हैं। मगर जब रूपा को पता चलता है तो वो बिल्कुल इनकार कर देती है, क्योंकि उसे लगता है राजीव बाबू ने उसे देखा नहीं है और वो उसकी बदसूरती के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लेकिन पंचों के मनाने पर वो शादी को तैयार हो जाती है। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है, मगर ये खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं चलती। राजीव उसके चेहरे की सच्चाई को देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे घर से निकल जाने को कहता है। रूपा और बड़े बाबू, जिन्हें वो अपने पिता की तरह मानता है, दोनों के कहने पर वो उसे बस घर में रहने की इजाजत देकर चला जाता है। राजीव को लगता है कि वो रूपा कोई और थी और वो उस रूपा को ढूंढने के लिए वो उसी जगह जाता है जहां वो उसका गाना सुना करता था, गीत सुना करता था।
रंग महल के दस दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकल गए नैना लड़ी थी, सैया निकल सर को झुकाए मैं तो चुप के खड़ी थी, सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी।
कौन जली कौन गली गैशा, मेरी सुदना लीनी हैरा किया, कौन गली गैशा।
रूपा आत्महत्या करने जाती है और राजीव उसे अपने ख्यालों वाली रूपा समझकर बचा लेता है। वो उसे घर वापस लौट जाने को कहती है, बदले में वो वादा करती है कि उसी पनघट पर उसी जगह हर रोज उससे मिलने आएगी, और वो अपने वादे को निभाते हुए हर शाम ढलने के बाद उससे मिलने वहां आती है। राजीव जब भी उसका घूंघट उठाकर उसे देखने की कोशिश करता है तो वो अपनी कसम देकर उससे उसे बांध देती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अपनी पत्नी को अपना ले।
मैं कैसे उसे पसंद करूं, मैं कैसे आंखें बंद करूं, वो औरत है तू महबूबा, तू सब कुछ है वो कुछ भी नहीं, वो औरत है तू महबूबा, तू सब कुछ है वो कुछ भी नहीं।
वो सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो औरत है मैं महबूबा, वो सब कुछ है मैं कुछ भी नहीं।
एक दिन रूपा राजीव को मिलने जाती है तो जयसिंह उसे देख लेता है जो वहाँ बांध पर काम करता है, तब वो उसे सारी सच्चाई बता देती है। रूपा को मिलने उसके काका आते हैं और तीन चार दिनों में उसे ले जाने की बात करते हैं। इधर बांध के रिपेयरिंग के काम से राजीव को भी शहर जाना पड़ता है और रूपा अपने गांव आ जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है और जल्दी ही घर लौटने की बात करती है। मगर उसके आने से पहले ही राजीव बाबू शहर चले जाते हैं। जब राजीव शहर से लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी माँ बनने वाली है। वो उसे पूरे गांव वालों के सामने जलील करके, उसका अपमान करके, उस पर बदचलन होने का इल्जाम लगाकर उसे छोड़ देता है। गांव वालों की थूथू और बदनामी का सदमा पंडित बर्दाश्त नहीं कर पाते और वहीं मंदिर में ही उनके प्राण निकल जाते हैं। इधर जोरो का तूफान आ जाता है और बांध में पानी बढ़ता जा रहा है। पानी इतना बढ़ जाता है कि बांध के टूटने का खतरा जान पड़ता है। राजीव पागलों की तरह अपने ख्यालों वाली रूपा को ढूंढ रहा है। बांध के पानी के बढ़ने की वजह से गांव वालों को गांव खाली करने को कहा जाता है। काका के बहुत समझाने पर रूपा गांव छोड़कर चले जाने को तैयार हो जाती है। फिर उसके गाने की आवाज सुनकर राजीव अपने ख्यालों वाली प्रेमिका रूपा को ढूंढता हुआ उसके पास पहुंच जाता है। गाना सुनकर राजीव जब रूपा के सामने आता है तो सामने आकर भी रूपा की असली सुंदरता और सच्चाई को पहचान नहीं पाता है। मगर अगले ही पल रूपा के गाने ने राजीव बाबू के फिर एक बार कदम रोक लिए और राजीव को पता चल जाता है कि ये वही रूपा है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा है। आज उसने उसकी असली सुंदरता को पहचान लिया। सुंदरता तन की नहीं बल्कि मन की होती है। कुदरत ने राजीव को सत्य शिव और सुंदरता से परिचित करा दिया।
ईश्वर सत्य है। सत्य ही शिव है। शिव ही जीवन जो तुजागर है। सत्यं शिवं सुंदरं। सत्यं शिवं सुंदरं। सत्यं शिवं सुंदरं। सुंदरं सुंदरम।